राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सबको गौर पूर्णिमा और होली की बधाई हो। आप सब आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से इस्कान भुज जगन्नाथ मंदिर में गौर पूर्णिमा के महाउत्सव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिषेक का दर्शन कर रहे थे। कल से गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव प्रकट्य अथवा अवतार का प्रसंग चल रहा है। भगवान अपने धाम में मन में एक संकल्प आया भगवान के कि बहुत समय से सब लोग यहां मेरी पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को भी वीर रस का रस आस्वादन करना चाहिए। वीर रस का मतलब है जैसे वीर योद्धा युद्ध करते हैं, ऐसे इस रस का मेरे को रस आस्वादन करने का भगवान के मन में संकल्प हुआ। और भगवान के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान की लीला शक्ति ने ब्रह्मा जी के पहले चार पुत्र सनक आदि ऋषियों को वैकुंठ में भेजा और वैकुंठ के सातवें दरवाजे के ऊपर खड़े दो द्वारपाल जय और विजय लाठी आगे दे के रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते हो। और ऋषियों ने और चार कुमारों ने उनको शराब दे दिया कि असुर बन जाओ। तो वैकुंठ के दो द्वारपाल जय और विजय धरती के ऊपर हिरणाकश और हिरणाकशिपु बन के आए। अब भगवान के पार्षद थे इसलिए भगवान अपने वीर रस का रस आस्वादन करने के लिए दो अवतार लेकर आए। पहले वाराहदेव के अवतार में आए और हिरणाकश का उद्धार किया, फिर हिरणाकशिपु के लिए प्रहलाद भगत के प्रसन्नता के लिए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। ये नरसिंह देव का वहां चित्र है, आप देखते हैं। दोबारा ये दोनों जय और वे जय रावण और कुंभकर्ण होके आए, लेकिन जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए तो सभी लोग नरसिंह देव की प्रार्थना कर रहे थे और ब्रह्मा जी भी कर रहा था, शंकर जी भी कर रहे थे, नारद भी कर रहे थे, लेकिन नरसिंह देव का क्रोध बढ़ रहा था। लक्ष्मी देवी को कहा आप शांत करो, वो भी पति के निकट जाने में घबरा रही थी बड़े बड़े नाखून देखकर। तो सबने छोटे बालक प्रहलाद को कहा कि आप जाके इनको शांत कीजिए, आपके लिए अवतार लेकर आए। प्रहलाद जी ने जैसे प्रणाम किया नरसिंह देव प्रसन्न हो गए, शांत मुद्रा में उनको उठा के गोद में बिठाया और चाटने लगे। तब नरसिंह देव भगवान के मन में एक और लोभ जागा कि बेटा बच्चा छोटा मां बाप की गोद में बैठता है, मां बाप को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा सुख तो बच्चे को मिलता है। बच्चा कभी भी उतरना नहीं चाहता है, इसका मतलब जो सुख प्रहलाद को मिल रहा है ये सुख तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है अब मैं जब अवतार लूंगा तो किसी माता पिता को पहले मेरे से भेजूंगा, फिर उनकी गोद में खेल के इस सुख का रस आस्वादन करूंगा। तो नरसिंह देव के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। एक एक माता नहीं, तीन तीन माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा के गोद में इसका रस का आनंद लिया। और फिर रामचंद्र जी के मित्र बने दो, एक तो बेचा बना गुहा राज, वो जो निषाद राज गुहा था, वो तो राम जी को दूर से प्रणाम करके कहता भगवान आप तो महान है, मैं तो नीच हूं। और दूसरा भगवान का मित्र बना सुग्रीव, कहता है मैं तो वानर और आप भगवान नर, मैं आपको कैसे। तो भगवान को मित्र मिले लेकिन सब हाथ जोड़ के खड़े होने वाले मिले। तो राम जी के अवतार में भगवान के मन में ये संकल्प हुआ, ये भाव हुआ, ये लालसा उत्पन्न हुई, ऐसे मित्र हो जिनके साथ में खेलूं, बराबर का मुझसे उनका साथ में बराबर बराबर कंधे पे चढ़ूं, घूमूं फिरूं, ऐसा मेरे को सुख मिले। राम जी जब दंडक अरण्य में जा रहे थे सीता देवी के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ, तो दंडक अरण्य के सारे ऋषियों के मन में एक संकल्प हुआ कि जैसे सीता देवी रामचंद्र का प्रेम से सेवन कर रही है और प्रेम से उनको प्रसन्न करने के लिए सारी प्रेममयी सेवा कर रही है, ऐसा अवसर हमको कैसे मिलेगा। तो सबने राम जी को प्रार्थना किया, तो राम जी ने कहा अब तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत धारी हूं, आप सब गोपियां बन के अगले मेरे अवतार के समय आना और इसी प्रेम का आप रस आस्वादन करना। तो राम जी के अवतार में दो बातें रह गई, एक तो मित्र चाहिए बराबर का और दूसरा प्रेम करने वाले बहुत से भक्त चाहिए। तो कृष्ण अवतार हुआ। अब भगवान कृष्ण के अवतार के समय उनके ऐसे सखा थे जो उनके साथ खेलते थे, उनको कंधे के ऊपर चढ़ते थे, कृष्ण के कंधे के ऊपर भी बराबर में चढ़ जाते थे, बराबर के प्रेम में, बराबर के प्रेम करने वाले मित्र मिल गए। और बहुत से ऋषि गोपियां बन के आ गए, ये जो दंडक अरण्य के ऋषि थे ये ऋषि गोपियां बन के आ गई, वेद की ऋचाएं थी वो गोपियां बन के आ गई, भगवान के अपने अंग से उत्पन्न राधा रानी अपना विस्तार करके अनंत गोपियों के साथ भगवान के साथ रास विहार किया। अब भगवान के मन में संकल्प हुआ जो सुख इन गोपियों को मुझसे मिलने में होता है उसका मुझे पता नहीं, मैं कितना सुंदर हूं कि इनको आकर्षण करता हूं इसका भी मुझे पता नहीं, और इनको क्या सुख मिलता है इसको मैं कैसे पता लगाऊं। तो श्री कृष्ण के मन में लालसा हुई गोपियों के और विशेष रूप के से राधा रानी के प्रेम का रस और प्रेम के परिकाष्ठा को, प्रेम के ऊंचे स्तर का रस आस्वादन करने का। तो भगवान श्री कृष्ण ही चेतना महाप्रभु के रूप में 534 साल पहले प्रकट हुए। तो ऐसे ये भगवान के मन में संकल्प की परिपूर्णता एक से आगे बढ़ते हुए, तो भगवान श्री चेतना महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ राधा रानी को मिला लिया, दोनों युगल दोनों मिलके एक बन के आए, है कृष्ण लेकिन भाव राधा रानी का अंगीकार करके आए, तो उनका रंग राधा रानी का हो गया और कृष्ण राधा रानी के रंग में आए। तो राधा रानी का रंग कौन सा है? गोरा। तो कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनका नाम हुआ गोरा हरि, गोरंगा। तो आज के दिन के लिए लिखा है सर्व सदगुण पूर्णम ताम, सर्व सदगुण सारे अच्छे गुण पूर्ण रूप से इस दिन में है। कौन सा दिन? आज का दिन। क्या नाम है इसका? इसको वंदना करते हैं, इसको प्रार्थना करते हैं। किसको? वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। किसको प्रणाम करते हैं? ये फाल्गुन महीने की, ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये सब गुणों से परिपूर्ण है। बोला कौन सी विशेष बात है इसमें? यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य, इसी में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य इसी दिन अवतीर्ण अवतार लिया। क्या भगवान ने अकेले अवतार लिया? बोलो नहीं, विशेष रूप से कृष्ण नाम भी और कृष्ण के नाम ने भी अवतार लिया। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के साथ कृष्ण के नाम का अवतार हुआ। कल आपको बताया था कि जब भगवान, आज सुबह ये कथा में हुआ था, आप लोग नहीं थे, जब गौर चंद्र चंद्रमा के रूप में स्वयं गौर हरि भगवान आ रहे हैं, तो पूर्णिमा के चंद्र को लजा आई और उस दिन राहु का उसको ग्रहण लग गया। तो ग्रहण का लाभ क्या हुआ कि सारे धार्मिक भारतीय लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं और गंगा में स्नान करने जाते हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, और संध्या काल को स्नान हो रहा था, चंद्र ग्रहण था, उसी समय चैतन्य महाप्रभु का नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुआ गंगा जी के तट के ऊपर नदिया में, नवदीप में, नदिया ग्राम में। और जैसे महाप्रभु का प्रकट हुआ तो उनके साथ भगवान के नाम का भी प्रकट हो गया। सब लोग वैसे ही हरि बोल कर रहे थे, और हरि बोल इतना नहीं कर रहे थे, भगवान ने जब स्त्रियां आती थी घर में तो भगवान रोने लगते, छोटे बालक रोने लगे और वो हरि बोल करें तो फिर हंसने लगे, तो सबको स्त्रियों को हरि बोल बुलवाने के लिए रो के और फिर सबके हरि बोल बुलवा दें। और उन बच्चे उन स्त्रियों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने नाम ही रख दिया गौर हरि, क्योंकि ये हरि का नाम सुन के बड़ा प्रसन्न होता है। इसका नाम अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी ने कहा कि बच्चे को, क्योंकि इनसे पहले सात सात बहनें जन्म लेते ही मर चुकी थी, तो इस बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति ना हो तो इसलिए नाम रखा निमाई, नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया। लेकिन इसका नाम पंडित जी इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा विश्वंबर, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्व का पोषण करेगा, विश्व का रक्षण करेगा। और उन्होंने उनके ज्योतिष के समय देखा कि ये बड़ा महापुरुष तीनों लोगों का उद्धार करेगा, तो चेतना महाप्रभु का ऐसे भगवान के नाम के साथ अवतार हुआ, आज के दिन अवतार हुआ। अब मैं एक श्लोक का विशेष, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद दर्शन होगा, 56 भोग का आरती होगी, और आरती के बाद कीर्तन करके बाहर होली दहन करके फिर सब लोग प्रसाद लेंगे, तो समय अपने पास कम है। लेकिन चेतन्य महाप्रभु कितने उदार है, राधा के भाव में आए हैं, क्या देने आए हैं, कृष्ण प्रेम देने आए हैं। अब कविराज गोस्वामी इस अध्याय के अंत में एक प्रेरणादायक श्लोक लिखा है, श्री च हाँ पाया मानुष जन्म, अगर आपका मानुष जन्म है, आप सबका है क्या मानुष जन्म, नहीं है, है ना, पाया मानुष जन्म ये ना सुने गौर गुण, अगर वो गौरंग महाप्रभु के नाम रूप लीला का गुण नहीं सुनता है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पाया मानुष जन्म ये ना सुने गौर गुण, हे न जन्म तार वैरथ हैला, उसका जन्म वैरथ हो गया। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि महाप्रभु के प्रकट को 534 साल हो गए, लेकिन अभी तक भारतवर्ष में भी महाप्रभु की कृपा बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंची है। और आश्चर्य यह है कि यह कृपा पाश्चात्य देश में पहुंच गई, प्रभुपाद जी ने इस कृपा को बंगाल से लेकर और पाश्चात्य देशों में सब जगह पहुंचा दिया। और आश्चर्य यह लगा कि जब प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका जा रहे थे 1965 में पानी के जहाज में, तो उनके साथ चैतन्य चरितमृत का शास्त्र था जो वो पढ़ते हुए जा रहे थे। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुण रूप लीला उनके साथ यहां से अमेरिका गया, और वहां के लोगों ने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया। वो लोग जो विषयी हो गए थे, वो लोग जो धर्म कर्म जानते नहीं थे, वो लोग जो हिप्पी नशई हो गए थे, पढ़ना लिखना छोड़ के माता पिता का घर छोड़ के धक्के खा रहे थे, उनके ऊपर कृपा ऐसी हुई महाप्रभु की कि वो सब साधु बन गए। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो सब साधु बन गए, क्योंकि चेतन महाप्रभु के अवतार में विशेष रूप से जगाई माधाई जैसे पतित लोगों का उद्धार हुआ। ये जगाई माधाई कौन थे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद इतने दुष्ट हो गए कि शराब पीने लगे और सब प्रकार का बदमाशी करने लगे, और जो भगवान का नाम उनको सुनाने गया उनको भी पत्थर मारने लगे। लेकिन महाप्रभु इतने दयालु और उनसे दयालु नित्यानंद उनके साथ, कहा महाप्रभु आपका अवतार असुरों को मारने के लिए नहीं है, इन पापियों को तारने के लिए। तो इसलिए चेतना महाप्रभु का अवतार जो है, पति तपावन हेतु तव अवतार, आपका अवतार ही पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। जो लोग गिर गए हैं, अपने धर्म से गिर गए हैं, उनके उद्धार के लिए है। प्रभुपाद ने 71 में आकर 71 में आकर भारत के अंदर फिर पुनः चेतना महाप्रभु की कृपा को बांटना शुरू किया। लेकिन अभी बहुत से नगर गांव और ऐसे बहुत सी जगह है जहां महाप्रभु की कृपा भारत में ही नहीं पहुंची है। चेतना महाप्रभु के 500 साल जन्म का जब था, ये था 1986 में, तब द्वारका से, आप कभी द्वारका जाएंगे तो एक बड़ा द्वार बना हुआ है प्रभुपाद के नाम से, प्रभुपाद द्वार उसका नाम है, वहां से बैलगाड़ियों के ऊपर पैदल यात्रा निकाली, जो द्वारका से चल के चेतना महाप्रभु के जन्म स्थान तक 50-100 भक्त रोज का हरिनाम कीर्तन करते हुए गए। और कई सालों में, बोलो 1-2-3 साल लगे वहां पहुंचने में, पहले निकली। और उस 86 से लेकर आज तक 34 साल हो गए हैं। ये चेतना महाप्रभु नित्यानंद दोनों कृष्ण बलराम हैं। ये कृष्ण बलराम गौर निताय के रूप में आज भी बैलगाड़ी के रथ यात्रा में पद यात्रा भारत का चारों कोनों का भ्रमण कर चुका है, कई ग्रामों में गया है। लेकिन अभी बहुत से गांव में जहां तक ये पहुंचना, हमने देखा उत्तराखंड में, हिमालय में जाते हैं तो वहां ये कृपा नहीं है महाप्रभु। यहां आपके इस क्षेत्र में अभी ये कृपा आई है तो इसका लाभ लेना चाहिए। लिखा यह क्या है, पाया मानुष जन्म, अगर उसके बाद गौरक कृपा का आपने नहीं प्राप्त कर लिया, और दूसरी लाइन में लिखा है कि गौर कृपा कैसी है, पाया अमृत धुनि, जैसे गंगा का नाम है सुर धुनि, सुर मतलब देवता, तो देवताओं के लोक से नीचे उतर के आई है, इसलिए धुनि कहते हैं नदी को, पाया अमृत धुनि, अरे अमृत की नदी आई है, महाप्रभु नाम अमृत लाए हैं। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, ये जो हरे कृष्ण मंत्र हम गा रहे हैं, ये इस धरती के ऊपर का शब्द नहीं है, ये भगवान के धाम गोलोक का प्रेम धन है। हरे कृष्ण मंत्र है राधार तंत्र, ये तो राधा रानी के मुख से उच्चारण होता है और कृष्ण को अपने वश में करने का मंत्र है, और ये मंत्र वहां से राधा के भाव में श्री कृष्ण चेतना महाप्रभु के लेख रूप के रूप में धरती पे लाए, ये वो कृपा करके लाए। ये क्या है, ये अमृत ध्वनि है, ये नाम अमृत है। अब देखिए, एक अमृत के लिए हमारे पास परिभाषा ये चलती है, एक स्वर्ग का अमृत, एक अमृत जो समुद्र मंथन से, खीर सागर के मंथन से निकला था, उस अमृत की कुछ बूंदें ज्योतिष के विशेष दिनों के ऊपर 4 जगहों पे गिरती है, वहां कुंभ मेला लगता है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, हर साल भी लगता है। तो उसी जहां अमृत की बात कर रहे हैं, उसी कुंभ मेला के प्रयागराज के स्थान में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के रस के अमृत का उपदेश 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी को दिया, और उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखा भक्ति रस अमृत सिंधु, और सिंधु का एक अर्थ नदी भी है, एक अर्थ समुन्द्र भी है। तो यहां लिखा है पाया अमृत ध्वनि पिए विष, अरे आपके पास अमृत ध्वनि है फिर भी विष पी रहे हो, विष का मतलब वैसे तो जहर होता है, और विष का यहां अर्थ है विषयों का भोग, विषयों का भोग मतलब संसार के तुच्छ भोगों के पीछे भाग रहे हो, यहां अमृत आपको भगवान ने ला के दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, जीव जागो गौर चंद्र बोले, अरे भाई जागो जागो, गौर चंद्र चेतना महाप्रभु कह रहा है जागो, तो क्या लोग सो रहे हैं, बोलो नहीं, लोग आध्यात्मिक रूप से सो रहे हैं, उठ रहे, खा भी रहे, चल रहे, पी रहे, लेकिन आत्मा के चिंतन के लिए सो रहे हैं। तो जागो जीव। फिर कहते हैं आपने मां के गर्भ में भगवान से वचन किया था कि जाकर हमको यहां से निकालो, हम आपको याद करेंगे। भक्ति विनोद कहते हैं आप वचन करके आयो, और चेतन महाप्रभु वो अमृत लाए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, आप मांग के ले लो। लो मांगी महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन लाए है, इसको मांग के ले लो, ये अमृत है, ये अमृत का सरोवर है, ये अमृत की नदी है। पाया अमृत धुनि पिए विश्व गर्त पानी, ये विश्व गर्त पानी पी रहा विश्व गर्त पानी, ये भौतिक सुख के खड्डे के अंदर से पानी पी रहा है जबकि अमृत की नदी बह रही है। तो कहते हैं जन्मया ये केन नहीं मैया मैया, अरे जन्मा तो है, ये तो मर गया होता तो अच्छा था, तो जी रहा है तो इस जीने का लाभ क्या। इसका मतलब जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है, आगे लिखा है जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है उसकी जीभा मेंढक की जीभा जैसी है, जो बेकार में सारा दिन ट्रा ट्रा करती है और मृत्यु रूप ही सांप को बुलाती है जो आके उसको निगल जाता है। ये काल रूपी मृत्यु सबके पीछे लगा हुआ है और ये जबान मिली है तो इससे भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। जीभा मिलने का यही फल है और कोई जीभा का आभूषण नहीं है, भगवान का नाम ही जीभा का आभूषण है। बोला वो कान जिसके अंदर हरि नाम प्रवेश नहीं करता है वो तो धरती के ऊपर सांप के बिल के बराबर है, उसका कोई लाभ नहीं है जीवन में। वो काम किसका है, कान जिसके अंदर भगवान के नाम प्रवेश करने के लिए वो हरि कीर्तन में आता नहीं है, नाम प्रवेश नहीं करता है, जीभा नाम नहीं लेती है, वो बड़ा पद प्रतिष्ठा हो, उसकी मान सम्मान हो संसार के अंदर, लेकिन वो मरे हुए शरीर के ऊपर जैसे कोई सुंदर कपड़े वस्त्र आभूषण पहना दो तो उसका क्या है, वो तो किसी को उसको कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे दुनिया के नाम पद प्रतिष्ठा ये सब मुर्दे के आभूषण के समान है, अगर जीवित है तो भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। गौरंग महाप्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, किसी को पापी को नहीं देखते, तापी को नहीं देखते, जो जैसा आए उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे को चेतना महाप्रभु के इस आविर्भाव दिन दिवस को इतना प्रचलित करना चाहिए, इतना ये महत्वपूर्ण दिन हो जाए। असल एक जगह इससे आगे लिखा है कि बाकी सारे तीर्थ व्रत नेम पूजा यज्ञ कोई कलयुग में फल देने वाले नहीं है, और ये प्रमाण से हम देख सकते हैं आंखों से। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले महात्माओं को, बड़े यज्ञ के कुंड बनाने वालों को, बड़े बड़े पूजा प्रतिष्ठा करने वालों को हमने देखा है कि एक छोटा सा व्यसन छोड़ने में सामर्थ्य नहीं है। एक छोटा सा व्यसन चाय का किला कप छोड़ने में भी उनमें इतना भी सामर्थ्य तो है नहीं। इसका मतलब उनके पूजा से पवित्र होने का कोई रास्ता तो है नहीं, मिल नहीं रहा है। एक व्यक्ति ने हमसे ये प्रश्न पूछा, इतने सारे मंदिर, इतने सारे सत्संग, इतने सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन लोगों के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लोगों के अंदर कोई सद्भावना नहीं आ रही है, लोगों के अंदर कोई अच्छा गुण दिखाई नहीं दे रहा है, बेईमानी उतनी चल रही है, चोरी उतनी चल रही है, तो लोगों को इतने सारे धार्मिक स्थानों में जाने का लाभ क्या हो रहा है। इतना सारा खर्चा करके, लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके बड़े बड़े कथाओं का आयोजन हो और उसके बाद भी लोगों के जीवन में पैसे का भी परिवर्तन न हो तो उसका लाभ क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सारे काम ऐसे है जैसे अब इस वक्त 7 साल पुराना 1000 का नोट आपके पास पड़ा है, लिखा है उसके ऊपर भारत स्टेट बैंक रिजर्व बैंक भारत है, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि वो करेंसी नहीं है, करंट करेंसी नहीं है, आज के चलने वाला वो नहीं है। तो ऐसे कलयुग की करंसी नाम है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवन में परिवर्तन लाता है, और ये परिवर्तन देश में नहीं परदेश में देखा, ये नवयुवकों पे देखो, नौजवान बच्चे देखो, ये नौजवान बच्चे है, इन्होंने सिर्फ कृष्ण नाम जपना शुरू किया तो इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आ गया? व्यसन छूट गए। अरे इतने गौरव के साथ धोती पहन के आने में इनको गौरव हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है कि हम अपने वेशभूषा में आ रहे हैं, हमारा ये आध्यात्मिक वेशभूषा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है हिंदुस्तान की वेशभूषा है, ये तो देवलोक की वेशभूषा है, जो देवी गुणों वाले हैं उनका वेशभूषा। अब देखो पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में होता है तो उसको शक्ति होती, कोर्ट में वकील को लाल काला कोट पहना है या डॉक्टर को सफेद कोट है तो उसका शक्ति होती है। ऐसे ये आध्यात्मिक जो वेश है इसका अपना एक प्रभाव है, और ये हमारे देश में सबके पास हुआ करता था और सबसे चला गया। कितना बड़ा संस्कृति के ऊपर आघात हुआ है। चेतना महाप्रभु का अवतार मुसलमान काल में हुआ, जब यहां राज मुसलमानों का था, लेकिन हजारों लोग भगवान के नाम का कीर्तन करने बाहर निकलते थे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि लगता है कोई भगवान का चमत्कारी महापुरुष आ गया है, कि इतने लोगों के अंदर अचानक कैसे भगवान के नाम का उच्चारण चालू हो गया, ये तो पहले कभी ऐसे नहीं करते थे। तो एक बहुत बड़ा ऐसे विकट स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने प्यादल घूम के भारतवर्ष पूरा दक्षिण भारत जगन्नाथपुरी से प्यादल निकले और कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से प्यादल निकले सारे चलते चलते और बंबई तक, और फिर वापस जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से उधर से गंगा सागर तक, वो जो धरती का बांग्लादेश, और वहां से आए वृंदावन तक, पूरे भारत को प्यादल भ्रमण किया और जगह जगह के हाथ ऊपर करके सबको कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न स्त्री का भेद, न पुरुष का भेद, न ब्राह्मण का भेद, न शूद्र का भेद, न दुनेवी मजहबों का भेद। बहुत से पठान लोग आए महाप्रभु के संग में और वो पठान भक्त बन गए, वो काजी कीर्तन को बंद कराने वाला, और महाप्रभु ने हजार मृदंग हजारों भक्त लेके उसके घर के सामने कीर्तन किया, और उसको उसके अपने शास्त्र कुरान से भगवान के नाम की महिमा सुना के उसको उसको प्रभावित किया। आज भी मायापुर में काजी की समाधि के ऊपर हमारे भक्त कीर्तन करने जाते हैं अभी भी। तो महाप्रभु ने सब लोगों को बिना भेदभाव के, और इसी भाव को प्रभुपाद जी लेके चेतन महाप्रभु की कृपा को बिना भेदभाव के देश विदेशों में इसका प्रचार किया। कितना बड़ा आश्चर्य है कि चेतन महाप्रभु की कृपा से इस हरे कृष्ण आंदोलन के अंतर्गत पूरे विश्व के अंदर काले अफ्रीका के और गोरे यूरोप के और रशिया के आज धोती पहन के चोटी रख के और साड़ी पहन के माताएं भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं। ये कितना गौरव होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का कितना उत्थान पाश्चात्य देशों में हुआ है, जबकि हमारे यहाँ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है जिस गति से यहाँ होना चाहिए। और पहले पहले प्रभुपाद जी जब अपने विदेशी शिष्यों के साथ यहाँ आए और सूरत के अंदर, अभी हम थोड़े दिन पहले सूरत में थे, उस जगह में गए थे जिस कमरे में प्रभुपाद जी रुके थे, एक जरी वाले थे उनके घर में उन्होंने बुलाया था, वो जरी वाले अमेरिका में प्रभुपाद जी से मिले थे, अपने घर में बुलाया और उनके भक्तों के संग आया, और जब वो कीर्तन करने जाते थे तब पूरा सूरत का नगर पालिका ने शहर को बंद कर दिया कि आज छुट्टी है, और भर भक्त जाते थे, सारा शहर इकट्ठा हो जाता था। तो प्रभुपाद ने कहा गुजरात के अंदर धर्म का बड़ा अच्छा बीज पड़ा है, बस इसको कोई पानी देने वाला हो और इसको कोई अच्छा प्रकाश दे दे। पानी भगवान के नाम का कीर्तन है और प्रकाश हरि कथा है, कथा और कीर्तन अगर यहाँ होने लग जाए तो इनकी भक्ति जो अब छुपी हुई है वो प्रकट हो जाए, और ये प्रकट हो जाए तो ये बहुत बड़ा कार्य पूरे विश्व के अंदर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके गुजरात के लोग पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर गुजराती आप कहीं भी जाओ आपको मिलता है। और वो लोग अपने जगहों के अंदर ऐसे धर्म का, प्रभुपाद जी अमेरिका में और पाश्चात्य देशों में लोगों को कहने लगे आप भारतीय मूल के हो, आपका काम था ये धर्म का प्रचार करना, अब आप धर्म का प्रचार कर नहीं रहे हो, आप तो यह धंधा करके पैसा कमा रहे हो, ये यहाँ के बेचारे पाश्चात्य देश वाले ये आपके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म सनातन है इसका प्रचार ये कर रहे हैं, आप ये प्रचार नहीं कर सकते हो तो कम से कम इनका सहयोग करो और इनको प्रचार में सहायता करो ताकि ये प्रचार को विश्व भर में बढ़ाए। और एक जगह प्रभुपाद जी ने इस्कान की स्थापना से पहले वृंदावन में इसी भागवत के पहले स्कंद में लिखा है, पूरी दुनिया के अंदर जो अशांति है, पूरी दुनिया के अंदर जो आतंक है, पूरी दुनिया के अंदर जो झगड़ा है, उस सारे का दायित्व भारत के ऊपर है। ये लिखने से ऐसे लगा कि भाई भारत क्या कर रहा है, जो सारी दुनिया की बुरा के अंदर जो भी झगड़े हो रहे हैं उसका भारत काय के लिए जिम्मेवार है। तो प्रभुपाद ने लिखा क्योंकि भारत के पास ऐसा सुंदर गीता भागवत का संदेश था, अगर ये दुनिया को दिया होता तो दुनिया की ये हालत नहीं होती। प्रभुपाद जी की गांधी के समय में थे और गांधी के आंदोलन में प्रभुपाद ने गांधी के आंदोलन को स्वीकार करके अपनी डिग्री नहीं ली अंग्रेज के कॉलेज से और खादी पहनते थे। गांधी जी को लिखा था बाद में कि आप इतना गीता का प्रचार, आपका गीता आपके मुख में है, राम नाम आपके हाथ में है, राम नाम आपके मुख में है, गीता आपके हाथ में, आप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अगर प्रचार करो गीता को तो दुनिया का सबका उद्धार हो सकता है। प्रभुपाद ने चिट्ठियां लिखी थी गांधी जी को उस समय में। तो प्रभुपाद ने लिखा कि भारत इसका जिम्मेवार है क्योंकि ये भारत का सनातन संदेश अगर पूरे विश्व में पहुंचा होता तो विश्व का ये हालत ना होता। और प्रभुपाद ने ये लिखने के बाद सोचा कि और क्या कौन नहीं करेगा, मैं ही करने जा रहा हूं। और प्रभुपाद ने यही संदेश लेके पाश्चात्य देश में जाने का स्वयं ने बेड़ा उठाया। और ये बेड़ा उठाने के बाद प्रभुपाद 65 में गए और 77 तक इस धरती के ऊपर रहे, तो 12 साल, केवल 12 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर 14 बार भ्रमण करके सारे ही जगहों के अंदर 108 से अधिक केंद्रों की स्थापना की, 70 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया और हजारों से ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति में लगा के पूरे दुनिया के अंदर एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित कर दिया। और प्रभुपाद जी एक दिन भारत में प्रवचन हिंदी में करते हुए कह रहे थे, चेतना महाप्रभु की कृपा ऐसी अद्भुत है, मैं एक वृद्ध 70 साल की आयु में भारत से बाहर गया और इतना दुनिया ने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीय आध्यात्मिकता का बड़े उदारता के साथ स्वागत किया है, आप भारत के भंग अंग, उस वक्त में भारत का भंग अंग भारत के टुकड़े करके चला गया था अंग्रेज, टुकड़े भारत के लिए रो रहे हो, अगर 5-6 नौजवान निकल के आ जाओ और इस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार पूरी दुनिया में करो तो प्रभुपाद के शब्द है पूरी दुनिया को हम हिंदुस्तान बना देंगे, आप एक टुकड़े के लिए नहीं पूरी दुनिया को हम हिंदुस्तान बना देंगे। इसका मतलब, हिंदुस्तान बनाने का मतलब सनातन धर्म पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा, केवल 10% लोग भी अगर कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो संसार का रूप रंग बदल जाएगा, लोगों की भावनाओं में परिवर्तन आ जाएगा। आश्चर्य लगेगा, बहुत अच्छे नवयुवक लड़के पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि भाई भावुकता से लोग भक्ति में आए हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भक्ति में गंभीरता से आए हैं। एक काम, अगर चेतना महाप्रभु ने एक ही काम कहा है करने को, भगवान के नाम का मुख से जप करो और जोर जोर से जप करो। और झारखंड, बिहार से झारखंड अभी अलग हो गया, महाप्रभु वृंदावन आने के लिए झारखंड के जंगल से जब आ रहे थे तो उर्ध्वभाव ऐसे हाथ ऊपर करके कीर्तन करने लगे तो शेर और हिरण वो भी एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, जो एक दूसरे को खाते हैं वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसका मतलब ये कीर्तन ऐसा है, पशु के अंदर भी वैर विरोध को खत्म कर सकता है, तो फिर मानव मात्र में प्रेम और भाईचारा पैदा करे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि ये भाव महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं है तो हम भक्तों के बीच में भी भाईचारा नहीं हो रहा। दूसरा दोनों को दुनिया को छोड़ो, हमारे अंदर में एक दूसरे से सहायता और सहयोग नहीं कर पा रहे, जबकि पशुओं में भी महाप्रभु ने अपनी कृपा से वैर विरोध को खत्म कर दिया। तो महाप्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ये प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। और महाप्रभु की कृपा इस हरे कृष्ण मंत्र में उन्होंने रखी है। ये जो इस मंत्र का जपेगा वो महाप्रभु की कृपा का पात्र बनेगा, और जितना जोर से बाहर जाके जप के जनता का उद्धार करेगा उतना महाप्रभु की कृपा का ज्यादा भागीदार बनेगा। तो आपको इस गौर पूर्णिमा को, हम थोड़े लोग बैठे हैं लेकिन थोड़ा लोग कोई कम नहीं है, एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक ग्यारह होते हैं, एक के पास एक खड़ा करो 11 हो जाएंगे। ऐसे 5 पांडवों को लेके कृष्ण ने पूरे धरती के ऊपर धर्म की स्थापना कर ली। 5 पांडवों को ही साथ में लिया, 100 कौरवों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। 5 ही समझदार लोग अगर धर्म की बात को समझ जाएं और निष्ठापूर्वक धर्म के ऊपर बैठ जाएं और प्रचार के कार्य में लग जाएं, कई जन्मों ने हमने सब ये माता पिता ये धन दौलत ये सुख सब देख लिए, ये मानव जन्म एक दुर्लभ मिला है, इसमें एक जन्म आप भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अर्पित करके देखो, आपके द्वारा कैसा चमत्कार महाप्रभु करा सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये दुनिया तो यहाँ रह जाएगी, हम भी चले जाएंगे, लेकिन आपका किया हुआ काम यहाँ सदियों तक सराहाया जाएगा। महाप्रभु का ये कृपा ऐसी, आज देखो प्रभुपाद जी एक व्यक्ति ने काम किया, दुनिया के आज 550 से अधिक केंद्रों में प्रभुपाद जी का सब जगह पूजन हो रहा है। लोगों ने देखा नहीं है लेकिन उनका सेवा पूजा हो रहा है। तो महाप्रभु की कृपा प्रचार से मिलेगी और प्रचार भगवान के नाम से होगा, और महाप्रभु इस नाम को ही धरती के ऊपर लाए हैं। तो आज के दिन महाप्रभु के प्रकट्य के समय महाप्रभु को सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे अंदर ये नाम जपने के लिए रुचि पैदा हो, इसके लिए हमें इसमें स्वाद आने लगे, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना भाव भर के भेजा है वो भाव जागृत हो जाए भक्तों के संग से और भगवान के नाम संकीर्तन से और हरि कथा से, और हम अपना उद्धार करके दूसरों का परोपकार करने के कार्य में संलग्न हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा चेतना महाप्रभु की भविष्यवाणी है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, अगर आपका मानव का जन्म भारत में हुआ है तो बड़े भाग्यशाली हो। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले अपने जन्म को सुधार लो फिर सबके भले करने के लिए बाहर निकल जाओ। तो हम ऐसे कुछ अपने मन में संकल्प कर लें कि महाप्रभु की कृपा से ये कार्य हम कटिबद्ध होकर करेंगे, और भविष्य के अंदर अगले साल गौर पूर्णिमा भगवान आप सबको और ज़्यादा उत्साह के साथ मनाने का सामर्थ्य दे, और भव्य सामने भव्य मंदिर के निर्माण का शुभ आरंभ हो सके गौर पूर्णिमा आने वाली तक। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद कृपा करें, गौ वैष्णवजन कृपा करें कि ये कार्य जो उनके नाम का यहाँ शुरू होने जा रहा है, और जो भाग्यशाली गोपाल भाई और उनके परिवार ने इस भूमि का दान किया है भगवान की सेवा के लिए, और जो यहाँ कृष्ण भावना के आप लोग सहयोगी सारे मिलके इस काम में लगे हुए हैं, आप सबके अंदर महाप्रभु ऐसी अपनी शक्ति का संचार करे और आपके हृदय में ऐसा कृष्ण प्रेम की बाढ़ आए कि उस बाढ़ में सब लोग आनंदित हो जाएं, और यहाँ एक भव्य कच्छ का गौरव नाम से केंद्र और पश्चिम वृंदावन, जैसे द्वारका लोग जाते हैं एक धाम है, ऐसे कच्छ के अंदर वृंदावन धाम बने और ये पश्चिम वृंदावन धाम बने और यहाँ लोगों का तांता बंधा हो, और बहुत बड़े विश्व, आप हमारे यहाँ तो एक 4 सरोवरों में एक सरोवर नारायण सरोवर तो कच्छ में है, तो इस सरोवर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे और यहाँ ऐसा सुंदर एक आध्यात्मिक केंद्र बने, ऐसा आप चेतना महाप्रभु के प्रकट्य के समय उनके पार्षद शिला प्रभुपाद जी के चरणों में और गुरु परंपरा और वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं। अब आरती और कीर्तन के बाद बाहर होली दहन का कार्यक्रम पूरा करने के बाद आप सब लोग प्रेम से प्रसाद लीजिए, और जो भाग्यशाली सुबह आ सकते हैं तो कल सुबह तो मंदिर में ही कथा होगी, और कल शाम को कहीं यहाँ कथा है उसका आपको सूचना दी जाएगी, और परसों भी शाम को किसी यहाँ सोसाइटी में कथा है तो आप लोग पधारिएगा। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि गौर पूर्णिमा की जय। गौर प्रेमानंदे।